कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
ओम शांति। बाबानी आ तपस्वी भूमि में अनेक बाबाना अनुभवी रत्नों लाभ आपणे त्रण दिवस थी लई रहा छे। अत्यारे पण आपणी सामे बाबाना एवा अनुभवी रत्न ज्ञान खजाना थी भरपूर एवा उषाबेन आपणी सामे छे। सौथी पहला आपणे एमनुं दिलथी स्वागत करीए छीए। उषाबेन तो गुजरातना ज छे अने छेल्ला 40 वर्षथी बाबाना ज्ञानमां छे। 25 वर्षथी मधुबनमां पोतानी सेवाओ आपी रह्या छे। टीवीमां एमना लेक्चरो तो आपणे घणा बधा सांभळ्या छे अने विशेष राजयोग शिक्षिका तो छे ज। शांतिवन होय के ज्ञान सरोवर होय, बधी जग्याए एमनी राजयोग शिबिरोनो लाभ बधा लेता होय छे। देश अने विदेशमां पण बहु सरस सेल्फ मेनेजमेंटना कोर्स अने क्लास करावामां पोते निपुण छे अने छेल्ला केटला समयथी गीताना भगवान कोण एना उपर बहु सरस बधी जग्याए व्याख्यानो आपे छे। अने जे भाई बहनों मीडिया पेपर आपणुं वांचता हशे, हूँ तो हमेश वांचू छू, एमां एमनो विशेष लेख आवे छे। तो एवा अनुभवी बेन आजे आपणी सामे छे अने अहींया आव्या छीए तो एमनो लाभ लेवानुं चुकाय ज नहीं। तो आपणे एटला सौभाग्यशाळी छीए के एवा बेन आपणने आजे मळ्या छे। तो अत्यारे आपणे उषाबेनने सांभळीशुं। उषाबेन,
ओम शांति। बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी रोज सुनते हैं और उसमें बाबा हम बच्चों को कितनी अनेक अनेक युक्तियां बताते हैं पुरुषार्थ के लिए भी और प्रैक्टिकल जीवन के लिए भी। दुनिया के अंदर मनुष्य के पास भले कितना भी ज्ञान क्यों न हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। और बाबा के हम बच्चों का प्रैक्टिकल जीवन है। आज ही सवेरे मैं दिल्ली से आई तो दिल्ली में दो दिन से गीता के भगवान की कॉन्फ्रेंस थी, तो बहुत गीता के विद्वान लोग आए थे जिन्होंने गीता के ऊपर पीएचडी किया था। जो सन्यासी आए वो भी जिन्होंने गीता के ऊपर पीएचडी किया है, ऐसे माना लर्नेड एकदम स्कॉलर्स गीता के वो आए थे। लेकिन जब भी हम उनको सवाल करते थे, पैनल डिस्कशन रखा हुआ था, तो उसमें सवाल करते थे कि गीता में जब भगवान ने कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, इसका मतलब क्या है, तो उनकी समझ में देखो इतने लर्नेड हैं, लेकिन बाबा क्या कहते, तुम बच्चे उनसे भी अच्छे हैं। तब महसूस होता था मुझे उनको देख करके, तो अव्यक्त का मतलब निकालते थे कि ब्रह्म अव्यक्त है, ब्रह्म अव्यक्त है, और फिर अजन्मा की बात नहीं करेंगे, फिर कुछ ना कुछ वेदों का बोलना शुरू कर देते हैं, वेदों के श्लोक बोलना शुरू करते हैं। मेरे मुख से निकल गया कि गीता में भगवान ने कहा कि मैं वेदों के अध्ययन से नहीं मिलता हूं, तो उनको गुस्सा आ गया। तो प्रैक्टिकल जीवन नहीं है, जब उनको गुस्सा आया तो मेरे मुख से निकल गया कि भगवान ने कहा काम क्रोध नरक का द्वार है। मना डिबेट अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, जब ये बात कही कि काम क्रोध नरक का द्वार है तो एकदम शांत हो गया। क्या कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वहां वो कमजोर है ना। जो प्रोफेसर्स थे संस्कृत के, जो पीएचडी किया हुआ था संस्कृत में और इन सब बातों पर, वो फिर मुझे कहने लगे स्टेज से ही कि आप जो है ना गीता के श्लोकों का मतलब अपने हिसाब से निकालते हो। मैंने कहा हम अपने मतलब से कहां निकालते, भगवान ने कहा है गीता के अंदर काम महाशत्रु है, आप लोग रोज पढ़ते हो गीता, लेकिन काम विकार पर जीत तो प्राप्त नहीं कर सके। हम ब्रह्मा कुमारियों ने गीता को प्रैक्टिकल जिया है, हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में है, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में है, और खाली हमारे जीवन में नहीं, मैंने कहा हमारे 9 लाख भाई बहनों के जीवन में भी पवित्रता की धारणा है। चुप हो गए, एकदम साइलेंस हो गए, क्या बोलेंगे, है ना। जो विद्वान थे उनके इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, कुरुक्षेत्र से थे, पुरी से थे, सब जगह से आए थे, पहले बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बात हमने सभा में रखी तो सभा में आधे तो अपने बैठे होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अगर बैठे होते हैं ना तो वाइब्रेशन बन जाता है, तो वो ब्राह्मण ताली बजाएंगे तो बाहर वाले भी ताली बजाएंगे, फिर तो क्या बोलेंगे, तो वहां कमजोर पड़ जाते थे। तो जब हमने ये बात कही तो अपनी दूसरी बहन जो स्टेज पर थी उन्होंने भी ये बात को उठाई कि हाँ पवित्रता की धारणा, माना एकदम जैसे फोर्स में आकर के हम लोग दोनों बोले, तो वो इतने चुप हो गए। तब मैंने कहा कि देखो आप लोग ने गीता का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया और पीएचडी किया, ब्रह्मा कुमारीज की भी अपनी फिलॉसफी है, कभी ब्रह्मा कुमारीज की फिलॉसफी को भी अध्ययन करो, उन पर पीएचडी करो। तो तब उनको अंदर में आया कि ठीक है, हम ब्रह्मा कुमारीज की फिलॉसफी को समझेंगे। तो जो एक सन्यासी था, कुरुक्षेत्र से खास आया था, हरिद्वार से आया था, वो भी पीएचडी किया हुआ था, तो उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा कुमारियों का कोर्स तो किया है 7 दिन का, लेकिन उनकी एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? नहीं, पवित्रता तो उनके जीवन में भी उसने धारण किया, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी के साथ मैं अग्री नहीं करता, है ना? तो सर्वव्यापी पर उसको बड़ा कि आप सब कुछ बोलो, आप भले बोल दो कि गीता का भगवान शिव है, बोलो, है ना, शिव है ये बोलो, लेकिन ये नहीं बोलो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये नहीं बोलो, शिव है ये भले बोलो। फिर कहने लगे कि शिव कहो कृष्ण कहो सब एक ही है ना। मतलब 2 दिन बहुत अच्छा आनंद में गुजरा, ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के साथ में भी, जो बाबा ने कहा था कि गीता को इस बार डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में रखो, तो 2 दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और लगभग 200 जने बाहर से भी आए हुए थे, उसमें कुछ बाबा के बच्चे थे, कुछ बाहर वाले भी थे सभा के अंदर। तो 200 के 200 जो है, 5-6 सेशन टोटल चले 2 दिन के अंदर, लेकिन पूरा समय बैठे रहे, इतना इंटरेस्टिंग माना रहा, डिबेट भी रही और साथ में क्वेश्चन आंसर भी रहे कि उसके भाव को समझाए, लेकिन भाव नहीं समझा सकते थे वो। तब महसूस हुआ कि बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं ना, अनपढ़े बहुत अच्छे है ना, अनपढ़े बहुत अच्छे हैं, कि इनकी कोरी स्लेट है, और इसलिए बाबा ने जो लिखा वो बस लिख गया अंदर, वही जीवन में उतर गया और वही प्रैक्टिकल हमारा जीवन है। तब उन्होंने एक बात तो स्टेज से बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया कि आप लोगों के पास व्यावहारिक ज्ञान जो है वो बहुत ऊंचा है, आप लोगों के व्यवहार के अंदर जो बातें हैं वो हम लोगों के जीवन में नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास यही बात। और कहा, इसलिए एक स्पीकर ने कहा, इसलिए मैं जब भी आप लोगों के संपर्क में आता हूँ, कोई भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, तो हर बार महसूस करता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ, हर बार महसूस करता हूँ मैं बहुत छोटा हूँ। कहा, इस बार भी जब मैं ORC आया तो इस बार भी महसूस किया कि मैं बहुत छोटा हूँ। कहने का भावार्थ कि बाबा जो कहते हैं कि एक समय आएगा कि आखिर ये विद्वानों को भी झुकना तो है ही है, तो ये समय अभी शुरू हो गया है, परिवर्तन का समय शुरू हो गया है। और जब अपने निरुपमा बहन भी साथ में थी, हमारे साथ में स्टेज पर, तो उसने भी जब ये पवित्रता की बात को लेकर के उठाया कि ब्रह्मा कुमारी से लोग डरते थे, लोग यही कहते रहे हम लोगों को, हमारे लिए सारे समाज में क्या सब जगह फैला दिया कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है, इतना मशहूर हो गए पवित्रता के कारण, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं, हमने छोड़ा नहीं इस बात को, और हम लगे रहे, और आज भी हम लगे रहे, और आज 9 लाख भाई बहन है इसके ऊपर। तो सचमुच तब उनके पास कोई शब्द नहीं थे, उसके आगे बोलने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, कि भाई इतना हमारी बदनामी हुई उस बात को लेकर के, आज दिन तक लोगों के अंदर यही भ्रांति है कि भाई बहन बनाते हैं, माना इतनी हमारी पवित्रता की बात समाज में फैली हुई है, के यहां जाओ माना पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। तो जो गीता में कहा है वो हमने प्रैक्टिकल जिया है, जो आप लोग नहीं कर सके। आप लोग खाली बोलते हो, श्लोक बोल देते हैं। हम लोगों को भले श्लोक नहीं बोलना आता है, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकल गीता का संदेश जो है, गीता का ज्ञान जो है, ये हमारी लाइफ है। तो हम सबकी लाइफ जो है यही प्रत्यक्ष करेगी भगवान को। हम सबकी लाइफ जो है यही एक दिन बाबा को ऐसा सारे विश्व के अंदर प्रत्यक्ष करना है, और यही आधार बनेगा गीता के भगवान को भी सिद्ध करने का। क्योंकि उसी जगह पर हम लोग ने देखा कि उन लोगों के मुख बंद हो गए। बाकी कितनी भी बातें सर्वव्यापी पर खूब बोले, इस बात पर बहुत बोले, गीता के भगवान पर बोले, हिंसक अहिंसक उस पर बोले, बहुत बातें बोलते रहे, लेकिन जब ये बात कही तो नहीं बोल सके, उसके बाद कुछ नहीं बोल सके, है ना। तो ये बात से झुकाना, और इसीलिए बाबा ने हमेशा गृहस्थी भाई बहनों को मिलते हुए क्या कहा है ना, कि आप लोग सन्यासियों को झुकाएंगे, इस बात को लेकर के झुकाएंगे आप लोग। हमेशा बाबा गृहस्थी को जब मिलता था, तो आज का जो विषय है सफलता, सबसे बड़ी सफलता हमारी यही है ना, जीवन ही सफलता के आधार पर है। जिस तरह कोई भी टेबल हो या कुर्सी हो, चार पहिए उसके चाहिए तभी बैलेंस में रह सकता है, इसी तरह सफलता के भी चार पहिए। सफलता के चार पहिए कौन से हैं? तो सबसे पहला पहिया उसका है जिसको हम कहते हैं दृढ़ता में सफलता, दृढ़ संकल्प जब करते हैं तो दृढ़ता में सफलता। दूसरी बात सफलता के लिए है कि नियत साफ तो मुराद हासिल, नियत साफ होनी चाहिए, तो कोई भी मुराद यानी कोई भी संकल्प क्यों ना हो मन के अंदर, जितनी बाबा कहते सच्चाई सफाई होगी उतना मुराद को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, सफलता है ही है। मुराद हासिल माना सफलता है ही है। तीसरी बात जो बाबा कहते हैं सफलता के लिए वह निश्चय में विजय, निश्चय बुद्धि बन जाना, विजय माना सफलता। तो जब निश्चय बुद्धि बन करके चलते हैं, जब स्वयं पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, परिवार पर निश्चय है, तो ये निश्चय में ही विजय समाई हुई है जो हर कार्य में सफलता दिला देंगे। और चौथी बात है सफल करो और सफलता पाओ, सफल करो और सफलता पाओ। तो ये चारों बातें आधार है कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली बात जो है कि जब हम मन के अंदर कोई भी विचार या कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है और वो संकल्प को हमें प्रैक्टिकल करना है, तो उसके अंदर दृढ़ता कितनी है, माना शक्ति कितनी है, उस संकल्प को साकार करने की तीव्रता कितनी है उसको देखना है। अगर तीव्रता कम है तो वो संकल्प सिद्ध नहीं होता है, वो सफलता प्राप्त नहीं कराता है। तो हमेशा जो भी संकल्प हम करें, अच्छे संकल्प, शुभ संकल्प, तो उसकी तीव्रता का आधार क्या है? उसकी तीव्रता का आधार है क्लैरिटी, बुद्धि के अंदर एकदम स्पष्टता, क्लियर। साथ ही साथ जो दूसरी बात कही कि नियत साफ, कि उस संकल्प में स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए, तो उसकी तीव्रता बढ़ेगी। तीव्रता को कम करने वाली है स्वार्थ वृत्ति। जहां कुछ रिटर्न में प्राप्ति करने की इच्छा है, कोई स्वार्थ है, तो वो संकल्प की दृढ़ता नहीं रहेगी। लेकिन जितना नियत साफ है, निस्वार्थ है, निश्चल है, निर्मल है, उतनी दृढ़ता की तीव्रता अधिक हो जाएगी और तब वो सफल होगा। साथ ही साथ तीसरी बात, फिर उसमें निश्चय, निश्चय बुद्धि कितने है, उसको करने के प्रति हमारा निश्चय, कि चाहे स्वयं में निश्चय, चाहे वो संकल्प सेवा का हो तो बाबा में निश्चय, कि बाबा करण करावन आ रहे, पूरा कराएगा ही बाबा, खुद की ताकत इतनी नहीं होती है। लेकिन जब बाबा को साथ में लेकर के चलते हैं तो जैसे डबल इंजन लग जाता है, तब निश्चय में विजयी हो जाते हैं। तीसरा, जब ये आता है कि ड्रामा कल्याणकारी ही है, ड्रामा में हमारा कल्याण हो नहीं सकता है, ये भी निश्चय है, तब भी ये संकल्प की तीव्रता और अधिक हो जाती है। और अगर सहयोग लेकर के चलते हैं परिवार का, है ना, तो और भी उसको पूरा करने का जो पावर है वो बढ़ जाती है। और चौथी बात उसके लिए कि क्या सफल कर रहे हैं, जितना श्वास सफल हो रहा है उस संकल्प को पूरा करने के लिए, जितना श्वासोश्वास लगा रहे हैं, तो श्वास सफल हुए उसके साथ साथ समय सफल होता है। उतनी देर जितना वो संकल्प को पूरा करने के लिए समय सफल होता है, शक्ति सफल होती है, संपत्ति सफल होती है, तब वो संकल्प पूरा हो जाता है। बड़ी दादी जी हमेशा कहती थी, 500 को सफल करो, 500 अगर सफल हो जाएगा तो वो संकल्प पूरा हो जाएगा। समय, श्वास, शक्ति, संपत्ति और संकल्प, है ना, ये 500 लगा देना चाहिए। उसके पीछे गहराई क्या है? अगर कोई भी शुद्ध संकल्प है मन के अंदर जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो उसको पूरा करने में जितने सकारात्मक संकल्प हम जोड़ते जाएंगे, उतना हमारा मन शुद्ध होता जाता है। तो सफलता, सकारात्मकता में शक्ति है उसको सफल करने के लिए। जीवन की जो धारणा है वो उसको पूरा करते, इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे अपने संकल्पों पर अटेंशन दो, क्योंकि ब्राह्मणों का संकल्प जिस क्वालिटी का होगा वो पूरा हो जाएगा। चाहे अच्छा संकल्प करो या बुरा संकल्प करो, अगर व्यर्थ संकल्प होगा, नेगेटिव संकल्प होगा, वो भी पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा होता है संकल्प, सिद्ध कैसे होता है, ब्राह्मणों का इतना जल्दी कैसे सिद्ध होता है? आप लोग ने, सभी ने अनुभव किया होगा कि ज्ञान में आने के बाद थोड़े ही समय के अंदर जो संकल्प करो वो साकार हो जाता है, जो सोचो वो सिद्ध हो जाता है। अनुभव है ना हर एक को, है ना? कैसे सिद्ध होता है पता है आपको? कैसे से ये कौन सी मशीनरी है जो हर संकल्प को सिद्ध करती है? तो मेरी एक बार किसी से चर्चा हो रही थी, एक जैन साध्वी जी से चर्चा हो रही थी, तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि ये जैन ही लोग चलते रहते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अगर उसके बदले तो आप लोग भी सेंटर खोलो और ज्ञान दो तो और अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, ये चलने के पीछे भी एक कारण है। तो क्या कारण है, मैंने कहा, तो कहा कारण ये है कि जब से ब्रह्मचर्य व्रत को हम जीवन के अंदर धारण करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य व्रत की जो शक्ति है, उसकी ऊर्जा जो है वो इतनी अधिक होती है कि अगर उस ऊर्जा को यूज न किया जाए और अगर ये दिमाग पर चढ़ गई उस और वो ऊर्जा, तो मनुष्य को पागल कर देगी। इसीलिए चलते हैं ताकि उस ऊर्जा को यूज करें, क्योंकि और कोई तो काम तो है नहीं, तो यूज करने के लिए भाई खाना बनाना तो है नहीं उनको, तो इसीलिए जो है भाई मांग के खाते हैं। तो तैयार, तो वो चलने में उस शक्ति को यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। दिमाग के ऊपर अगर वो चढ़ गया तो मेंटली इम्बैलेंस कर देता है व्यक्ति। इसीलिए बाबा ने, तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, बच्चे सेवा अंत घड़ी तक तुम्हें करनी है, 8 घंटा सेवा और 8 घंटा योग। तो ये जो बाबा ने हमें सेवा दिया है, ये खिलौना है जहां हम अपनी एनर्जी को यूज करते हैं, ताकि वो एनर्जी, वो ऊर्जा दिमाग को खराब ना करे, मनुष्य के मेंटली इम्बैलेंस ना करे, है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसके बराबर कोई ऊर्जा नहीं है दुनिया के अंदर। और उसी ऊर्जा को जब व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है तो हैवान या पागल हो जाता है। बाबा ने हम बच्चों को सेवा का साधन जो दिया है, वो सेवा के साधन के उसमें जब हम अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, आप सोचो कितने असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। विचार सागर मंथन, ज्ञान ऐसी चीज बाबा ने दे दी साथ में ताकि उसको विचार करो, ताकि उस ऊर्जा को आप यूज करते, विचार सागर मंथन करो। कई बार भाई बहने कहते हैं पहले हम नहीं विचार सागर मंथन कर सकते थे, लेकिन जब से बाबा के बच्चे बने अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अभी मुरली को मनन करना सीख गए, सारा दिन मुरली को मनन करना, इतना ही नहीं लेकिन बोलना सीख गए बाबा के बच्चे, अनपढ़े बोलना सीख गए ना, कि प्रदर्शनी में खड़ा कर दो किसी को भी समझाने के लिए, तो क्या करते हैं, समझाना चालू कर देते हैं। कई बार वो कहे हमें नहीं आता, लेकिन प्रदर्शनी में खड़ा कर दो, न बोलने वाला भी क्या करता है, बोलने लगता है ना? तो ये जो हमारी ऊर्जा यूज होती है, क्योंकि आज 1 घंटा भी व्यक्ति बोलता है ना, तो 3 घंटा काम फिजिकल करने के बराबर उसकी ऊर्जा यूज होती है। इसलिए बाबा कहते समझाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, तुम समझाओ, सबको समझाते रहो, किसी न किसी को ज्ञान दान करो। ये बाबा ने हम बच्चों को उसकी वैल्यू बताई कि हम अपनी ऊर्जा को, पवित्रता की शक्ति को कैसे यूज करें, लेकिन उसकी विधि बताई। इसीलिए हर संकल्प हमारा सिद्ध होता है, क्योंकि पवित्रता की शक्ति दृढ़ता भी लाती है, निश्चय को भी बनाती है, सफल करने में भी मदद करती है, अंदर की नियत को भी साफ करती है, पवित्रता उसी का तो नाम है ना? तो इसीलिए हर संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो पॉजिटिव संकल्प करो वो भी सिद्ध होंगे, और नेगेटिव करेंगे तो वो भी सिद्ध होंगे। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को नेगेटिव नहीं करना है। वहां तक बाबा ने कहा है कि बच्चे नेगेटिव भी इम्प्योरिटी है, नेगेटिव भी इम्प्योरिटी है, बाबा के महा वाक्य है। व्यर्थ भी अपवित्रता है। इतनी गहराई में बाबा हम बच्चों को ले गए कि इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दो, और उसके लिए बाबा ने विभिन्न युक्ति दी है। कोई युक्ति नहीं आती है तो सफल करना शुरू करो उसको। जितना दूसरों की सेवा में उस शक्ति को आप सफल करना शुरू करेंगे, किसी भी तरीके से, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध की शक्ति, आप सफल करना चालू करो उसको, तो वो दुगुना होकर रिटर्न होकर के आपके पास आएंगे। यह अनुभव है ना। कई बार हम देखते हैं कि जितना बाबा के कार्य में हम लगाते हैं उतना डबल होकर के वापस आ जाता है ना। सफल करो इसी में, दृढ़ता की शक्ति उसी का नाम है कि तीव्रता होनी चाहिए, और जितनी हमारे पवित्रता की शक्ति अंदर में है उतनी हमारी तीव्रता अधिक हो जाती है, दृढ़ संकल्प। और उसके लिए जो बाबा ने हमें विधि बताई कि अमृत वेले रोज उस संकल्प को रिवाइज करो, बाबा के सामने रिवाइज करो, और बाबा से पुनः उस संकल्प को शक्ति या सकाश जैसे लेते जाओ बाबा से, और फिर उसको पूरा करेंगे। बाबा ने गहराई में बताई कि क्या सफल करने से क्या प्राप्ति है। बाबा ने कहा समय सफल करने से प्राप्ति क्या है कि अंतिम समय सुहाना होगा। समय सफल जिसने किया है तो अंतिम समय जब शरीर छोड़ने का वक्त आता है वो समय सुहाना हो जाएगा हमारा। श्वास सफल किया तो अंतिम श्वास कैसे निकलेगा, बाबा की याद में वो श्वास निकलेगा। तन को सफल किया, तन की शक्ति को जितना सफल किया हमने, तो जैसे दुनिया में या शास्त्रों में गायन है कि दधीचि ऋषि ने हड्डी हड्डी स्वाहा किया यज्ञ के अंदर, तो जिसकी हड्डी हड्डी स्वाहा हुई तो उसकी हड्डी हड्डी पावन होगी, खुशबूदार। कि अंतिम समय जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके शरीर में दुर्गंध के बजाय सुगंध निकलेगी। इसी तरह मन की शक्ति को सफल करो तो मन इतना शुद्ध और निर्मल होने लगेगा। धन को सफल करो तो अंतिम समय कोई भी पीड़ा आएगी तो कोई ना कोई धन देने के लिए आपके सामने धन का जैसे आधार से आपको अंतिम समय वो मददगार बन जाए। माना अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि अरे धन नहीं था इसीलिए ऐसा हुआ, ये अफसोस नहीं होगा। तो माना भविष्य की प्राप्ति के आधार पर हम नहीं कर रहे सफल, भविष्य में तो मिलना ही है, गारंटी है, लेकिन यहां पर भी कभी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की कमी के कारण कोई अफसोस करना पड़े ऐसा नहीं होगा उसको। अभी मैं हैदराबाद गई थी तो हैदराबाद में मेरा पासपोर्ट का काम करना था। प्रैक्टिकल जीवन के अंदर इतने अच्छे अच्छे अनुभव कभी कभी मिल जाते हैं। तो एक भाई था तो वो भाई की पहचान थी तो उसने कहा कि हो जाएगा पासपोर्ट का काम, आप आ जाओ। तो 12 बजे हम गए, मैंने कहा मैंने शाम की फ्लाइट में ही वापस जाना है, शाम को 6 बजे मुझे वापस जाना है, 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है वापस। तो पहले तो उसने कहा कि बहन जी आधा दिन में क्या होगा, सुबह आप आए और 10 बजे तो ऑफिस खुलती है, उसके बाद बात करूं मैं, और शाम को पासपोर्ट मिले ये तो असंभव महसूस होता है। मैंने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं, ऐसा होगा तो हम रुक जाएंगे। तो जब ये कहा तो उसने कहा ठीक है चलो। तो भाई गया पासपोर्ट ऑफिसर के पास, उसने बात किया तो उसने कहा कोई बात नहीं, कहा आप फॉर्म भर लो, फॉर्म भर करके आओ। अब वो भाई 10 बजे हम गए उस भाई से मिले और उससे बातचीत किया तो 12 बज गया था। अब आप सोचो 12 बजे मैं फॉर्म भर रही हूँ, तो मेरे को भी अंदर एक बार तो संकल्प अंदर आया कि शायद नहीं हो पाएगा, आज शाम को ही नहीं मिल जाएगा। लेकिन अंदर में एक विश्वास भी था, निश्चय भी था कि हो जाएगा, बाबा का काम जो है हो ही जाना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं होगा। तो 12 बजे फॉर्म भरा, 12:30, उसके बाद लंच होता है, तब तक हमने फॉर्म भर करके सारा ये किया। वहां पर गए और गए तो कहा कि अभी आप खाली फोटो आदि दे दो, फोटो उसने खींच लिया। फिर उसने कहा कि वो ऑफिसर को मिलना पड़ेगा। तो वो ऑफिसर कहने लगा कि नहीं ऐसे हाथ में तो नहीं दे सकते, पासपोर्ट है, पुलिस इंक्वायरी तो जरूर होगी, या तो पुलिस वाले से आप सर्टिफिकेट लेके आओ। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने फोन किया पुलिस वाले को, आईजी को फोन किया तो कहा आ जाओ, है ना। तो मैं एकदम आश्चर्य, आईजी की ऑफिस में गए तो वो भोजन कर रहा था, भोजन करते करते बाहर आ गया, नहीं तो कभी आते नहीं, भोजन करते करते आया, कहा आप लोग ने भी खाना तो नहीं खाया होगा, लेकिन आप हमारा तो खाएंगे नहीं। लेकिन उसके पास फ्रूट पड़ा था, संतरे पड़े थे, केले पड़े थे, कहा ये तो आप खा सकते, ये आप खाओ जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। तो मैंने वो भाई को पूछा और तुरंत उसने कहा जैसा आप कहेंगे ना वैसे मैं लिख दूंगा, आप बोलो क्या लिखना है मुझे। अब आप सोचो डीआईजी व्यक्ति वो कहे कि आप जो बोलेंगे वो मैं लिखूं, ऐसा कभी हो सकता है? हो नहीं सकता है। उसने वैसा लिख दिया जैसे जैसे हमने बोला। तो मैंने उस भाई को पूछा कि ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर जो ये भाई इतना झुक जाए, इतना बड़ा व्यक्ति झुक जाए आपके आगे। तो मेरे को बार बार कहने, बहन जी आपकी शक्ति के कारण। मैंने कहा मेरी शक्ति नहीं है ये मेरी शक्ति नहीं है, कुछ तो रहस्य है। फिर जो हमारे साथ बहन थी, उस बहन ने कहा बहन जी मैं आपको बताऊं इस भाई की विशेषता क्या है। क्या विशेषता बताई उसने मेरे को कि उसकी जो है ज्वेलरी की दुकान है, लेकिन गुरुवार के दिन तो ये कभी बैठेगा नहीं दुकान पे, उसकी दुकान उसकी पत्नी ही संभालती है पूरा हफ्ता, और ये भाई जो है ना ये सेवा में ही होता है। मैंने कहा कि क्या सेवा करते हैं? तो कहा इसका काम एक ही है कि जो भी शांति सरोवर में आएगा वीआईपी, कोई भी प्रोग्राम में वीआईपी आएगा, वो वीआईपी का नाम एड्रेस उसका फोन नंबर ले लेने का, और फिर हर गुरुवार को उसको भोग जरूर पहुंचाने का। तो ये सुबह से भोग बांटना चालू करता है, उसको शाम को 5 बज जाता है भोग बांटते हुए। तो मैंने कहा फिर आपका बिजनेस कैसे चलता है? तो उसने मेरे को कहा बहन जी मैं बाबा की सेवा करती हूँ, बाबा मेरी सेवा करता है, मेरा बिजनेस संभाल। मैंने कहा कैसे कैसे बाबा आपका बिजनेस संभालता है? तो उसने कहा गुरुवार के दिन, मैं अनुभव से आपको बताता हूँ कि मैं गुरुवार से सुबह जब जाता हूँ क्लास में, तो बहन जी को मालूम है कि मैं सब वीआईपीओ को भोग बांटने जाऊंगा, तो मेरे लिए कम से कम 100 थैली बनाकर रखते हैं वो भोग के डब्बे, छोटे डब्बे बनाकर रखते हैं भोग के, और मैं प्यूरिटी पेपर या ज्ञानामृत जो भी होगा हर एक के ऑफिस में जाऊंगा, और उन लोगों को भी पता है कि आज गुरुवार है तो प्रसाद आएगा हर वीआईपी, तो वो प्रसाद उनको बॉक्स देता हूँ, वो फिर सारे ऑफिस वाले को प्रसाद खिला। इसलिए सारे ऑफिस वाले मदद न करे कोई काम के लिए, ये हो नहीं सकता है।
आप सोचो वो मदद न कर, भोग जो हर एक के पेट में जा रहा है और ये सेवा मेरे सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं। तो मैंने कहा फिर आपके बिजनेस में तो कुछ फर्क पड़ता होगा। कहा नहीं, फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताऊं कि मैं रोज की कमाई जो है मेरी 10,000 रुपया होती है लेकिन गुरुवार के दिन मेरी 50,000 होती है। ये फायदा है, उसने बताया। तो कहा मैं अपना समय सफल कर रहा हूं और जैसे ही जिस दिन गुरुवार के दिन मानो मैं माउंट आबू में हूं या और कहीं सेवा में गया हुआ हूं, नहीं पहुंचता हूं, भोग मेरे सिवाय कोई दूसरा तो नहीं ले जाता है, तो नहीं पहुंचता है तो वो एक एक का फोन आना शुरू होते हैं कि आज गुरुवार हुआ, प्रसाद तो आया ही नहीं, प्रसाद तो आया ही नहीं, प्रसाद तो आया। वो पासपोर्ट ऑफिस वाला भी वो प्रसाद रोज खाता था हर गुरुवार को। देखो ये सेवा, और इतनी इससे सेवा हुई है कि मैं आपको कहूं असंभव कार्य संभव हो जाता है कि 12 बजे मैं फॉर्म भर रही हूं और वो व्यक्ति कहता है कि आप आईजी का लेटर ले आओ। आईजी ने कहा जैसे आप लिखवाओ वैसे मैं लिख दूंगा। उसके असिस्टेंटों को भी भोग मिलता है, सभी ऑफिस वाले सभी भोग खाते हैं तो सभी को भोग मिलता है। सेवा देखो कैसे, जो एक है यहां से जाना आत्मा को टच करना और दूसरी है यहां से जाना और आत्मा को जो बाबा का ब्रह्मा भोजन खाया है गुरुवार का और गुरुवार को जो खाता है वो क्या करेगा, उसकी बुद्धि तो पलटेगी, बुद्धि पलटेगी। फटाफट साइन कर दिया उसने सब जगह और 5 बजे मेरे हाथ में पासपोर्ट आ गया, जो असंभव कभी नहीं करते। तो एक भोग बाबा का और वो व्यक्ति अपना समय सफल करता है। तो उसने कहा कि मेरी कमाई जो है ना 50,000 हो जाती, रोज की कमाई मेरी 10,000, बाबा मेरा ध्यान रखता है तो मैं बाबा का ध्यान क्यों नहीं रखूं। और मेरा अनुभव है ये कि मैं बाबा की सेवा करता हूं तो बाबा मेरी सेवा करता है। वहां मेरी उसकी पत्नी कहती है कि ये घर अगर दुकान पर होता है ना तो उसके अंदर दया बहुत है, दया इतनी है कि अगर दुकान पे होगा तो फ्री बांटेगा, इसलिए ये सेवा में जाए ना तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। वो भी कहती है सेवा में जितना रहता है ना अपना समय सफल करता है तो यहाँ हमको तो प्राप्ति प्राप्ति है ना बाबा की। और हमारी एक दुकान थी, आज 3 दुकान ज्वेलरी की हो गई। कहने का भावार्थ देखो, एक समय सफल कर रहा है, धन सफल कर रहा है, स्वास्थ्य सफल कर रहा है तो रिटर्न में ये प्रत्यक्ष अनुभव अभी 15 दिन पहले का मैं सुना रही हूँ। तो उसने कहा, जब बताया बहन जी ने मेरे को कि हर गुरुवार को भोग बांटता है, हर वीआईपी के घर में भोग जाता है, हर वीआईपी के ऑफिस में भोग पहुंचता है और इसीलिए आज कोई भी काम हो ना हमारा, कहीं हमें न लाइन में खड़ा रहना पड़ता है न कभी रुकता है वो काम, काम रुकता नहीं है हमारा, एक भोग की सेवा ऐसी है। मैंने कहा ये तो एकदम जिसको कहे एक मिरेकल। तो सफल करने से प्रत्यक्ष अनुभव है सफलता कैसे मिलती है, हर कार्य में सफलता कैसे मिलती है। तो संकल्प अंदर में एक दृढ़ संकल्प था, निश्चय था कि होना ही है आज, जरा भी मैंने संशय वाला संकल्प आने नहीं दिया, उसको उसकी तीव्रता अगर आता भी था तो भी मैं खत्म कर देती थी कि नहीं आज मिलना ही चाहिए मुझे पासपोर्ट। तो इसीलिए मैंने देखा कि हमारे संकल्प में एक सिद्धि भी होती है क्योंकि उसकी तीव्रता इतनी है, निस्वार्थ है, निर्मल है, तो ये होना ही है। और वो भाई जो हमारे साथ चलते रहे वो सारा दिन कहते हैं वो सेवा में लगा रहता है और अभी तो खाली, पहले तो खाली गुरुवार गुरुवार सेवा करता था, अभी तो हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम तो रहता ही है सेंटर माना, हर रोज कभी शिवरात्रि है तो कभी दिवाली है तो कभी कुछ है, कुछ ना कुछ शांति सरोवर में प्रोग्राम तो चलता ही रहता है। तो कहा कि उसके कारण जो है इतनी वो सेवा में अपना समय देता है। वो बहन कहती है मेरा मेरे को भी इतनी शांति रहती है बिजनेस में, मैं बिजनेस भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सब संभाल। पहले मुझे बहुत फील होता था कि ये क्यों ब्रह्मा कुमारी, पहले वो ज्ञान में नहीं थी उसकी पत्नी, तो कहती है मेरे को फील होता था, मैं रोज झगड़ा करने जाती थी बहन जी के पास कि आप उसको रोकते क्यों हो,
उसको बिजनेस पर भेजो, बिजनेस पर भेजो, बिजनेस पर भेजो। तो बहन जी कहते थे वो बिजनेस पर आएगा ना लुटाएगा, वो नहीं होगा ना तो तेरा डबल कमाई होगा। अब बोल तुमको क्या करना है, इसको बिजनेस पर बिठाना है कि बाबा की से? बोले लगाओ सेवा में, लगाओ इसको। कहने का भावार्थ ये है मेरा कि वो सफल कर, अपना समय स्वास शक्ति सफल करता है तो उसको रिटर्न में इतनी प्राप्ति है, और सेवा में भी हर कारोबार इतना सहज सरल हो रहा है, और इतने बाबा के बच्चे VVIPs जिसको कहा जाए, बड़े बड़े लोग, वो अभी रोज भोग खाने के बाद उसकी बुद्धि परिवर्तन न हो, ये हो सकता है? तो क्लास में धीरे 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 पहले प्रोग्राम में बुलाया, फिर गुरुवार को बुलाने लगा, संडे को बुलाने लगा, फिर वो उसका काम ये है कि उसको भू भू करता है, भोग खिलाता है, भू भू करता है, भोग खिलाता है, भू भू करता है ना? कभी कहेंगे ये माउंट आबू का भोग है, कभी कहेंगे ये शांति सरोवर का भोग है, कभी कहेंगे ये हमारे गुरुवार का बाबा का भोग है। मतलब भोग खिलाता है, ज्ञान की भूमि करता है, प्योरिटी देता है, ज्ञानामृत देता है, कुछ ना कुछ साथ में जरूर देना है। और कहते सारे ऑफिस वाले पढ़ते हैं कितनी सेवा होने लगी है उस एरिया की एक भोग से, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और कहा मेरी ईर्ष्या कोई करता नहीं है क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं जो सेवा करता हूं मेरी कोई ईर्ष्या करता नहीं है। और ही वो कहते हैं कि भाई रमेश भाई करेंगे ये, हाँ तो चलो रमेश भाई भी, बहन जी भी ये काम करना है, रमेश भाई को बुला, वो ले जाएगा। तो पूरा दिन, क्योंकि मेरे साथ जब सारा दिन रहा तो मैंने कहा आपका बिजनेस का क्या होगा, बोले वो चिंता नहीं करो दीदी आप, वो तो हो जाएगा, मैं कभी बिजनेस पर जाता भी नहीं हूँ, सुबह जाएंगा शाम को जाऊंगा, बस एक टाइम चक्कर खाली मारता हूँ, कहीं कुछ साइन करना होता है तो साइन कर देता हूँ, बाकी निकल जाता हूँ, मेरा काम ही ये है। तो देखो सफल करने से सफलता की प्राप्ति है ना कितनी है। भविष्य तो सुरक्षित हो ही जाता है, लेकिन वर्तमान में भी कितनी बाबा की सेवा उसके कारण से होने लगी है वहां पर जो कभी नहीं हुई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग वहां के क्लास में जब आते देखा मैंने, तो मुझे लगा कि सचमुच एक भोग भी कितनी सेवा करता है, ठीक है ना? तो अभी आप लोग भी करेंगे ना, तो समय सफल करो, श्वास सफल करो, अंतिम श्वास हमारा बहुत सुख से निकलेगा, समय सफल करो तो समय कितना सुंदर जाएगा हमारा, एक एक घड़ी जैसे हमारी कमाई के आधार पर वो समय में व्यर्थ जाएगा नहीं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा, है ना? तो दृढ़ता में सफलता, निश्चय से विजय, नियत साफ तो मुराद हासिल, और सफल करो और सफलता पाओ। ये चार पहिए लगा दो ब्राह्मण जीवन को और देखो कैसे गाड़ी चलेगी सफलता की मंजिल पर, ठीक है? अच्छा, अब शांति। ज्ञान की बातें तो सुनते ही रहते, इसलिए आज थोड़ी प्रैक्टिकल बातें भी सुनाई कि हम लोगों के जीवन की शक्ति कहाँ है और वो शक्ति कैसे हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है, इतनी हमारे पास शक्ति है। तो शुद्ध नशे में अभी रहना है और उस शक्ति को, उस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना है, सफल कर तो जाओ, ठीक है ना? शांति।
6:30 से 7:30 तक का योग है, इसीलिए सभी यहीं बैठे रहेंगे। और उषा बहन जी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से सभी को भरपूर भी किया और सभी रिफ्रेश भी हो गए, और समय शक्ति धन श्वास कैसे सफल करें उसकी प्रेरणा मिल गई, चाबी मिल गई ना। हाँ, अभी उस चाबी को लगाना वहां जाके, ठीक है? ओम शांति।
गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल
ओम शांति। थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से देखे स्वयं को प्रकृति के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ज्योति पुंज के रूप में और धीरे धीरे इस पंच तत्व की देह के आकर्षण से न्यारे होते जाए। सारी मैं और मेरेपन की रस्सियों को छोड़ते जाएं और अंतवाहक शरीर में प्रवेश कर देह से न्यारे हो जाए। उड़ते जाते हैं ऊपर की ओर, अर्श से फर्श की ओर, पंच तत्व की दुनिया से दूर नमः शाम के समय उड़ते हुए अपने सूक्ष्म वतन की ओर जहां मेरा संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप उस चमकीले वस्त्र को मैं धारण करती हूं। एकदम हल्कापन महसूस करती हूं। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते रूप में आगे बढ़ती हूं। तो अव्यक्त बाप दादा मेरा आवाहन कर रहे हैं, बाहें पसारे बाप दादा खड़े हैं, बाबा के सन्मुख जाती हूँ। बाबा अपने बाहों की माला पहनाते हैं, बाबा के नैनों में असीम प्यार और बाबा की प्यार भरी दृष्टि में मैं स्वयं को तृप्त महसूस करती हूँ। बाबा के हाथ मैं अपने मस्तक पर महसूस करती हूँ। जिस वरदानी हाथों से बाबा मेरी वरदानों से झोली भर देते हैं, बाबा के हाथ में हाथ दे करके बाबा वतन की सैर पर ले चलते हैं। एक बहुत सुंदर स्थान जहाँ कमल आसन है, लाइट के कमल है, जिसमें सप्तरंगी लाइट्स है, कमल आसन पर विराजमान होती हूँ। कितना सुंदर नजारा है ये, हर एक अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप कमल आसन पर स्थित है। और अव्यक्त बाप दादा सामने एक बहुत सुंदर कमल पर विराजित होते हैं। और बाबा के मस्तक से पावरफुल लाइट और माइट की किरणें हम सब पर पड़ रही है। धीरे धीरे मैं आत्मा स्वयं में बाबा की लाइट और माइट को महसूस कर रही हूं, समाती जा रही हूं। भरपूर हो रही हूं। बाबा के साथ का एहसास मुझे भीतर से सशक्त करते जा रहे हैं। धीरे धीरे बाबा के संग बाबा मुझे विश्व की सैर पर ले जा रहे हैं। और नमः शाम के समय मंदिरों में कितने भक्त अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं। बाबा के संग उन भक्तों की मनसा सेवा करते हैं। उन भक्तों की मनोकामना को पूर्ण होने का वरदान दे रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है ये। फिर बाबा के संग कई महान आत्माओं को सकाश देते हैं, वैज्ञानिकों को शक्ति देते हैं। धीरे धीरे वापस अपने वतन की ओर सूक्ष्म लोक में अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को भी छोड़ते हुए धीरे धीरे ने परम धाम की ओर जाती हूं। प्रकाश पुंज के रूप में एकदम मुक्त अवस्था में जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, उस ज्योति के देश में अपने निज स्वरूप में निराकारी निर्विकारी निर अहंकारी स्वरूप में देख रही धीरे धीरे शिव बाबा के सन्मुख स्वयं को देख रही हूं। शिव बाबा से पावरफुल शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूं। जैसे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो रहे हैं, और मैं आत्मा पारस मणि बनती जा रही हूं, एकदम चमकती हुई मणि के समान। संकल्पों से भी परे निर्संकल्प स्थिति में पावरफुल प्रकाश का बीज की तरह भरपूर महसूस करती हूँ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा परम पवित्र प्रकाशमय पारस मणि है, और मैं आत्मा भी पारस के समक्ष चमक रही हूं। कितना दिव्य अनुभव है ये,
धीरे धीरे मैं वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति के मध्य में विराजमान होती हूँ। और बाबा की लाइट और माइट की शक्ति को ब्रुकुटी से सर्व कर्मेंद्रिय में उस ऊर्जा को प्रवाहित करती हूं। बाबा की लाइट और माइट की शक्ति से सर्व कर्मेंद्रिय में भी वो तेज ऊर्जा समाती जा रही है। महसूस कर रही हूं तन और मन एकदम हल्का